फिर अर्जुन भीष्म और द्रोण को गुरु ये इस तरह से संदर्भ में उल्लेख करते हुए भगवान को कह रहे हैं कि ये जो मेरे गुरुजन हैं, जो महानुभाव हैं, कैसे हत्वा, कैसे इन्हें मैं मारूं, तो ये भी पिछले श्लोक के ही संबंध में है आज का श्लोक। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि हलोके, हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रधिघ्नान्। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके, हत्वार्थ कामां सुगुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धां। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके, हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धां। अब तक अर्जुन उवाच चल रहा है, गुरुन अहत्वा, अर्थात हत्वा का अर्थ होता है संस्कृत में मारना, हनन करना। अहत्वा का अर्थ होता है नहीं मारना, उसका विपरीत। तो अर्जुन कह रहे हैं कि गुरु अहत्वा ही महानुभावा, कि ये गुरु साधारण गुरु नहीं है भीष्म और द्रोण, इसलिए मैं इन्हें नहीं मार सकता। अहत्वा श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, और वो भी यदि मैं मारूं तो किसके लिए? श्रेय क्या है, मारने के पीछे उद्देश्य क्या है? भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, कि मैं भोग करना चाहता हूं, ये जिस राज्य में रह रहे हैं वहां से इनको निकाल कर, इनको मार कर मैं उस गद्दी पर बैठूं या मेरे भाई उस गद्दी पर बैठे, ये कारण है। ये कारण की वजह से मैं अपने गुरु को यहां पर मारने के लिए उतारा हुआ हूं। हत्वार्थ कामां सुगुरु निहै व भुंजीय भोगान रुदिर प्रदिग्धान। मान लो मैं इन्हें मार भी दूं और मारने के पश्चात मैं और युधिष्ठिर महाराज राज्य भी करें, परंतु वो राज्य, वो भोग किस प्रकार का होगा? वो जो राजगद्दी होगी वो भीष्म और द्रोण के रक्त से रंजित होगी, रुधिर अर्थात रक्त, प्रदिग्धान, कि वो जो मेरा भोग होगा वो हर समय मुझे याद दिलाएगा कि मैंने अपने गुरु भीष्म और द्रोण की हत्या कर एक एक निवाला मैं खाऊंगा, वो एक एक निवाला उनके रक्त से रंजित रहेगा। तो काफी मार्मिक श्लोक है ये, अंदर से झंझोड़ने वाला श्लोक, जिसके अंदर वो अपनी गुरु भक्ति दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि इसमें मैं मेरे भविष्य में उस पाप के साथ नहीं रह सकता, गुरु हत्या के पाप के साथ मैं नहीं जी सकता। तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आज के श्लोक के। सबसे पहले अर्जुन के द्वारा भीष्म और द्रोण के लिए उन्होंने गुरु का शब्द इस्तेमाल किया है। अब तक वो भीष्म और द्रोण इस प्रकार से, या पितामह इस प्रकार से कह रहे थे, इस श्लोक में गुरु कहा है इन दोनों को, भीष्म पितामह को भी गुरु कहा, खैर द्रोणाचार्य तो है ही, वो तो अर्जुन के गुरु थे ही, परंतु भीष्म पितामह को भी गुरु यहां पर कहा। फिर केवल गुरु नहीं, गुरु के साथ कहा महानुभाव। तो उसके पीछे क्या कारण, अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को महानुभाव क्यों कहा, इसकी हम चर्चा करेंगे। और अंततः अर्जुन श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे जो राज्य प्राप्त होगा इनकी हत्या के पश्चात, इन गुरुजन इन महानुभाव की हत्या के पश्चात, वो भोग वो राज्य इनके रक्त से सना हुआ होगा, रक्त रंजित भोग। तो सबसे पहले अर्जुन गुरु क्यों इन्हें पुकार रहे हैं, इन दोनों को। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी होगी कि पहले अध्याय में ये दोनों सेनाओं के बीच में रथ लाने के लिए किसने कहा, अर्जुन ने कहा ना, अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। ये दोनों सेनाओं के मध्य में हे अच्युत, ये जो रथ है मेरा वो स्थापित कीजिए। आपको यदि ध्यान होगा तो इस श्लोक के पश्चात पहले अध्याय में अर्जुन ने एक श्लोक कहा कि मानो जब अर्जुन ने ये बात भगवान से कही कि दोनों सेनाओं के मध्य में ये रथ ले चलो, तो स्वाभाविक भगवान पूछे होंगे ना, क्यों भाई क्यों बीच में ले चलो। तो उसके जवाब में अर्जुन कहते हैं योत्स्य मानान अवेक्षेत हम या एतेत्र समागत धार्तराष्ट्रस्य च दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। ध्यान में है श्लोक, अर्जुन ने कहा कि मैं इसलिए ये रथ इन दोनों के बीच में रखवाना चाहता हूं कृष्ण, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं निकट से, बहुत दूरी हो रही है, ठीक से दिख नहीं रहा मुझे कौन कौन वहां पर उपस्थित हैं, तो मैं निकट से देखना चाहता हूं धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि। एक तो धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि दुर्योधन को, केवल धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि दुर्योधन को नहीं, दुर्योधन के बगल में युद्धे प्रिय चिकीर्षव, युद्ध से युद्ध के जो प्रिय हुए हैं आज, जैसे कई बार आप देखो भक्तों का नाम होता है कृष्ण प्रिय दास, है ना, तो कृष्ण के जो प्रिय हैं, तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं ये सब जो उपस्थित हैं युद्ध के प्रिय, युद्धे प्रिय चिकीर्षव, कौन कौन है जो दुर्बुद्धि दुर्योधन जो कि युद्ध प्रिय है, वो युद्ध प्रिय दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए मैं रथ को बीच में रखवाना चाहता हूं। तो अर्जुन ने कहा और कारण दिया प्रथम अध्याय में। तो भगवान ने क्या किया, अब 64 करोड़ योद्धा, कल्पना कीजिए कि कितने फरलांग दूर ये पूरी सेना फैली होगी, कितने मील दूर फैली होगी, और इसका मध्य ढूंढना, मतलब भगवान का ज्योमेट्री कितना अच्छा होगा, इसका मध्य ढूंढना और रथ को इसके मध्य में स्थापित करना। लेकिन भगवान ने कहां स्थापित किया रथ को, भगवान ले गए हाँ भीष्म और द्रोण के सामने और कहीं नहीं। ये जो आज हम श्लोक ले रहे हैं ये इसलिए प्रथम अध्याय थोड़ा रिफ्रेश कर रहे हैं कि ध्यान में रहे कि अर्जुन ने क्या पूछा था और भगवान ने क्या किया। अर्जुन ने यह नहीं कहा था कि भीष्म और द्रोण के सामने रथ ले चलो, अर्जुन ने यह नहीं कहा था, अर्जुन ने केवल यह कहा था धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय, युद्ध के प्रिय जो जो हैं, और जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, मुझे उन्हें देखना है कौन कौन है। तो भगवान कहीं पर भी रथ को ले चलते, दुशासन के सामने खड़ा कर देते, या जितने और सारे खड़े थे कौरव सेना के उनके सामने खड़ा कर देते। नहीं, भगवान सोचकर, भगवान सोचकर भीष्म और द्रोण के सामने रथ को खड़ा किया। तो इससे यह समझ में आता है कि भगवान अर्जुन के मन में एक ये प्रश्न खड़ा करना चाहते थे कि तुम देखना चाहते हो ना कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ कौन दे रहे हैं, ये तुम्हारे गुरु, ये तुम्हारे जो गुरुजन, तुम जो इतनी पूजा इनकी करते हो, ये साथ दे रहे हैं, ये खड़े हैं वहां पर, और ये वहां पर तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देने के लिए नहीं खड़े, ये धनुष बाण लेकर खड़े तुम्हें मारने के लिए। तो केवल रथ को वहां खड़ा करने से ही भगवान ने संकेत अर्जुन को दे दिया, और अर्जुन के अंदर ये सब विफलता और ये शोक, ये सब अर्जुन के मन में भीष्म और द्रोण को विशेष रूप से देखकर हुआ। तो इसलिए ये श्लोक संबंधित है प्रथम अध्याय के उस श्लोक से, क्योंकि अब तक कितने कितने श्लोक हो गए हैं, 46 श्लोक, 46 श्लोक प्रथम अध्याय के, और ये चार श्लोक, 50 श्लोक हो चुके हैं। अर्थात हम जब पाठ करते हैं 50 श्लोकों का तो कुछ समय लगता है ना, और यहां पर ऐसा नहीं कि हमारी तरह जल्दी जल्दी अर्जुन देख देख के श्लोक बोल रहे हैं। कई बार तो हम भूल जाते हैं क्या वो सामने भी है, फिर भी भूल जाते हैं कैसा बोलना है उसे। तो कुछ समय लगा अर्जुन को ये सब श्लोक उच्चारण करने में, और अर्जुन पूरी भावना से बोल रहे हैं, रोते हुए बोल रहे हैं, शोक संविग्न मानस, खड़े हुए बैठे, उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के विकार, इस प्रकार से ये श्लोक बोल रहे हैं। अब यहां पर अर्जुन फिर से जब भीष्म और द्रोण को देखते हैं तो उन्हें अब याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे मैं द्रोणाचार्य के गुरुकुल में इनसे क्या कुछ नहीं सीखा, भीष्म पितामह ने क्या कुछ मुझे नहीं सिखाया। तो इसलिए इन दोनों के संदर्भ में अर्जुन मानो दीक्षा एवं शिक्षा गुरु का महत्व इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य के गुरुकुल में वो धनुर्विद्या में दीक्षित हुए और भीष्म पितामह से उन्होंने शिक्षाएं ली, तो मानो उनके दीक्षा और शिक्षा गुरु दोनों वहां पर उपस्थित, और किसी शिष्य के जीवन में ये दो गुरु सबसे महत्वपूर्ण, अक्सर एक ही हो सकते हैं, एक ही गुरु दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, परंतु यहां पर देखिए दीक्षा और शिक्षा दोनों गुरु वहां पर उपस्थित हैं बगल बगल में। तो जब दीक्षा और शिक्षा गुरु सामने आए, चाहे वो कहीं पर भी हो, शिष्य को क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, साष्टांग दंडवत, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो यहां पर अर्जुन खड़े हैं और वो भी रथ पर, और वो भी अस्त्र शस्त्र लिए इनको मारने के लिए, अपने दीक्षा और अपने शिक्षा गुरु को मारने के लिए। तो इसके द्वारा अर्जुन भगवान को क्या संकेत दे रहे हैं? भगवान को वो याद दिला रहे हैं, आपको याद है आपके भी एक गुरु थे सांदीपनि मुनि, गुरु सांदीपनि मुनि जिनके गुरुकुल में आप और आपके भैया बलराम जी, ये दोनों सांदीपनी मुनु के गुरु में जो आश्रम में जो थे, गुरुकुल में जो थे, और आपको याद है कि उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी थी। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है कि सांदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कृष्ण और बलराम वो सांदीपनी मुनि को अब गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, जो कि एक शिष्य का कर्तव्य है गुरु दक्षिणा देना। तो सांदीपनी मुनि उन्होंने क्या गुरु दक्षिणा मांगी, किसे पता है? उनका जो मरा हुआ पुत्र, सोचिए मरा हुआ पुत्र मांग लेना, वो केवल कृष्ण बलराम ही ला सकते हैं ऐसी गुरु दक्षिणा, और कोई शिष्य नहीं इस पृथ्वी पर जो ऐसी गुरु दक्षिणा अपने गुरु को लाकर दे। मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित कर लाना उसी देह में। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम गए कहां? प्रभास क्षेत्र द्वारका, और वहां पर एक पांचजन्य नामक राक्षस, उसने इसको खा लिया था, इनके पुत्र को खा लिया था, और समुद्र में वो स्थित था। तो भगवान श्री कृष्ण पहले तो उससे युद्ध किए, और फिर पता लगा कि उसने जो इनको खा लिया था वो अब नहीं है, उसके पेट में नहीं है। तो कहां? यमराज, यमलोक। तो वहां से फिर भगवान ने वो उसके शरीर से बना हुआ वो शंख लिया, पांचजन्य शंख, जो भगवान का प्रसिद्ध शंख है, वो शंख लिया, और शंख फिर वो यमलोक यमपुरी लेकर गए। और वहां पर ये वर्णन है कि भगवान के बहुत से प्रयोजन थे, भगवान कहीं पर भी जाते हैं तो एक साथ बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर आते हैं। तो भगवान यमपुरी गए और वहां पर भगवान ने शंख बजाया, पांच जन ने शंख बजाया, तो जितने उस बैच के थे, वो अलग अलग बैच में आते रहते हैं, तो उस बैच के जितने थे वो सारे, उनका उद्धार तो हो ही गया, केवल वो शंख भगवान की ध्वनि सुनकर, तो बहुत सौभाग्यशाली बैच था कि भगवान ने शंख बचाया। अचानक सारे यमदूत, उनको नोटिस दिया गया बंद, सारी यातनाएं बंद, और सबको रिहा किया जाए, सब जाओ, आपका उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई। तो वो होता ना स्कूल में अचानक छुट्टी दे देते, अचानक कुछ हो गया, कोई मर गया यहां वहां, या कोई नेता इत्यादि मर गया, तो अचानक बोलते आज स्कूल को छुट्टी, चलो। तो सब ऐसे पीट पीट के अपना ताली मार मार के बाहर आते हैं, आज छुट्टी, क्यों छुट्टी? गए हमने एक बार ऐसा, हमारे जो मुरारजी देसाई, इनके साथ जब कुछ हुआ था तो हमको ऐसी छुट्टी मिली थी, तो हम सब लोग, हमको तो पता नहीं था कि कौन है, किसकी किसका देहांत हुआ है, केवल इतना बताया कि कोई हमारे बहुत बड़े नेता, इनका देहांत हुआ है, तो छुट्टी आ गई। तो सभी इतना नाच नाच के स्कूल के बाहर आ रहे थे, मुरारजी देसाई की जय जो भी है, हम जानते भी नहीं थे कौन है। तो वैसे वहां पर सबको रिहा किया गया, और फिर भगवान ने यमराज जी से मांग लिया, तो यमराज जी इनके पुत्र को लेकर आए, और वैसे ही जो उनके पुत्र थे वो फिर से सांदीपनी मुनि को लौटाया भगवान ने। तो अब भगवान को गुरु और गुरु को मारने, और वो भी ऐसे महानुभाव को मारने का जो पाप है, इसके संदर्भ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु सांदीपनी मुनि, और उनके गुरु सांदीपनी मुनि को उन्होंने जो गुरु दक्षिणा दी उसकी याद दिला रहे। आपने तो आपके गुरु के मरे हुए पुत्र को फिर से जीवित कर लाया, और यहां पर मुझे बोल रहे हो अपने गुरु को मारो, ये कौन सा इंसाफ है? जो खुद के गुरु के मरे हुए पुत्र को आप जीवित कर ले आते हो, और यहां पर ये मेरे गुरु खड़े हैं, इनको मैं मारूं, क्या ये मेरी गुरु दक्षिणा होनी चाहिए? तो बहुत सोच समझ के अर्जुन गुरु और महानुभाव ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पश्चात अब महानुभाव, जो अर्जुन ने इन दोनों को महानुभाव कहा है, महान और अनुभाव इन दो शब्दों से बना है महानुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है विचारधारा, जिसकी विचारधारा बहुत महान हो उसे कहते हैं महानुभाव। अक्सर हम ये शब्द, आजकल तो कोई ज्यादा सुनता भी नहीं शब्द ऐसा, महानुभाव क्या है, कौन सी भाषा है ये? परंतु कई बार जब कहा जाता है आज हमारे मध्य महानुभाव आए हैं, किसी का कभी स्वागत किया जाता, तो महानुभाव का अर्थ यहां पर यह बताया गया है कि विशेष रूप से अर्जुन ने केवल पूरी सेना में केवल इन दोनों को कहा, भीष्म और द्रोण, केवल इन दोनों को कहा कि ये है महानुभाव। क्यों? क्योंकि इनकी महान विचारधारा है। और यदि हम महाभारत में पढ़ें तो और भीष्म और द्रोण की विचारधारा शुरुआत से इतनी महान रही, ऐसा नहीं कि केवल पांडवों के प्रति, दुर्योधन के प्रति भी भीष्म और द्रोण की विचारधारा इतनी महान हर समय रही। हर समय वो धृतराष्ट्र को यही संदेश उपदेश देते रहते कि ये जो तुम्हारा दुर्योधन है, हम इसके उद्धार हेतु बोल रहे हैं कि ये सुधर जाए। जैसे जब एक और कारण इनके महानुभाव होने का ये है, जब भगवान शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए और वहां पर जब भगवान ने प्रस्ताव रखा कि कम से कम 5 गांव इनको दो, और दुर्योधन वहां पर उसने अपनी सेना को बुला लिया, बंदी बनाओ ग्वाले को, भगवान को कहते हैं ग्वाले को बंदी बनाओ, भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया, तो महाभारत में वर्णन है कि जब भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया तो भगवान का विश्वरूप केवल भीष्म और द्रोण देख सके, धृतराष्ट्र तो खैर अंधा था ही, और बाकी कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, ये सारे जो पार्टी, इन्होंने आग बंद कर ली। भगवान विश्वरूप दिखा रहे हैं और ये आंख बंद कर ली इन्होंने। ये दुरानुभाव का लक्षण होता है, जो दुरात्मा कोई होता है उसका। और भीष्म और द्रोण और विदुर, ये तीन, इसलिए विदुर को भी कहा गया है महात्मा विदुर। तो ये तीन भगवान के विश्वरूप को देख सके, अर्थात भगवान के विश्वरूप को कोई भी साधारण दृष्टि से नहीं देख सकता, दिव्य दृष्टि चाहिए। तो तुरंत इनके अंदर भगवान ने दिव्य दृष्टि इसलिए दी क्योंकि ये महान विचारधारा वाले थे। तो महाभारत में एक कारण है कि वहां से समझ में आ रहा है कि भीष्म और द्रोण ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, या साधारण कौरव शत्रु पक्ष में नहीं खड़े हुए थे। परंतु इसके साथ हम और भी कारण देखेंगे भीष्म और द्रोण की महानता का, क्योंकि अक्सर अर्जुन, पांडव और भगवान के जो ब्रजवासी भक्त हैं, इनका गुणगान होता है कि हाँ अनन्य भक्त भगवान के हुए, भगवान के नित्य पार्षद हुए। परंतु भीष्म और द्रोण अक्सर इनके ऊपर उंगली उठाई जाती है कि क्या ये किस प्रकार के महाजन, भीष्म पितामह एक 12 महाजनों में से एक है, तो एक किस प्रकार के महाजन हैं जो अपने आराध्य देव के सामने शत्रु बनकर खड़े। तो बहुत आवश्यक है जानना कि इनकी महानता क्या थी। सबसे पहले भगवान की आज्ञा का पालन किया इन्होंने। कौन सी आज्ञा? हाँ, युद्ध करने की आज्ञा। उन्होंने, भगवान ने इनको कहा था वहां जाकर दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर युद्ध करो, क्योंकि यदि भीष्म और द्रोण दुर्योधन के पक्ष में नहीं खड़े होते युद्ध करने के लिए तो दुर्योधन की कोई हिम्मत नहीं थी, यहां तक कि कर्ण की भी कोई हिम्मत नहीं होती, पूरी कुरु सेना नहीं आती, वो सब भीष्म और द्रोण के पीछे खड़े, क्योंकि सामने कौन है, भीम अर्जुन ये लोग, तो इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि भीष्म सामने थे और द्रोणाचार्य सामने थे, इसलिए इनकी थोड़ी सी हिम्मत बनी कि हाँ हम भी कुछ तो कर सकते हैं, ये लोग सामने हैं इसलिए आप लोग सामने रहे, आप पीछे पीछे। तो भगवान ने इनको कहा था, क्योंकि इनके वहां होने के वजह से बाकी सारी जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष वाले वो एकत्रित हुए। फिर अब देखिए, ये साधारणतः हम नहीं जानते कि भगवान ने इनको कहा था वहां पर खड़े होकर युद्ध करने के लिए, इसलिए साधारणतः कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अभी जैसे यदि एक उदाहरण दें कि कोई भक्त है तिलकधारी और कंठी माला और धोती कुर्ता पहना हुआ, शिखा वगैरह ये सब, और ऐसे किसी भक्त को कोई देशी दारू की दुकान में देखे, जैसे एक बार बंबई में एक भक्त वो आए हमारे, हम लोग कुछ ब्रह्मचारी थे, तो वो आए और बोले कि पता है क्या, वो उसको मैंने कहां देखा, किसको कहां देखा, और अरे वो ऐसे नाम बताया उनका कि ऐसे से नाइट क्लब में देखा, तो हमने पूछा आप क्या कर रहे थे, ने उसने कहा वो कंठी माला पहने हुए मैंने किसी को देखा नाइट क्लब, मतलब आप क्या, नहीं मैंने निकाल रखी थी। तो अब यदि किसी को वहां पर, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर अवस्था में हरिनाम करते हुए जा रहे थे और कुछ पियक्कड़, इसी प्रकार से एक वो अपनी पार्टी उनकी चल रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने इनका उद्धार करने के लिए ओ चले गए अंदर, तो सभी अब रोकने लगे कि अगर चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी, इनको यदि कोई अंदर देख लेगा तो क्या सोचेगा। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के अंदर जाने का उद्देश्य उनका उद्धार करना था, परंतु कोई बाहर वाला व्यक्ति जो नहीं जानता कि उनके जाने का उद्देश्य क्या है, वो तो फिर गलत उनके ऊपर कलंकित नाम ठहराएगा उनका। तो उसी प्रकार से कोई बाहर वाला व्यक्ति देखता है, चलो देखो कौन कौन खड़े हैं, कहां कहां, कौन सी टीम में कौन कौन खड़े हैं, तो देखें हाँ ठीक है कृष्ण के पक्ष में कौन है, ये सब युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम अर्जुन, हाँ ठीक है ये तो भक्ति है, ये तो खड़े हो उधर ही होंगे। तो भक्त की लिस्ट यदि उनको दी जाए कौन कौन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, अर्जुन हाँ कहां खड़े हैं, यहां भीष्म द्रोण ये कहां खड़े हैं। तो जब तक उन्हें नहीं पता कि वो क्यों खड़े हैं जहां खड़े हैं, तो वो तो इन दोनों के ऊपर गलत नाम ही ठहराएंगे। तो इनकी शरणागति देखिए, भीष्म और द्रोण इनको महानुभाव इसलिए कहा गया है, इनकी शरणागति देखिए कि ये पूरी बदनामी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए। ऐसा नहीं कि भीष्म और द्रोण जो भी उन्हें देखता उनको बोलते मैं यहां पे ये बोले इसलिए खड़ा हूं, कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है दुर्योधन में। उल्टा भीष्म और द्रोण के ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाए गए थे कि ये देखो ये है ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, और ये राजगद्दी के सिंहासन को पकड़े हुए वहां पर हस्तिनापुर में रहते हुए, और ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का पक्ष लेते हुए ये भीष्म खड़े हैं, और ये द्रोणाचार्य, दुर्योधन जो रोटी फेंक रहा है इनको खाने के लिए, इस प्रकार के लांछन, इसलिए ये खड़े हुए ताकि ये इनकी जो आमदनी मिलती है ना इनसे, ये आमदनी चलती रहे। ये सब कुछ सहन करते हुए भीष्म और द्रोण को वहां पर खड़ा रहना पड़ा। इसलिए भीष्म और द्रोण को यहां पर महानुभाव कहा गया है कि उनकी ऐसी महान विचारधारा कि जो कुछ भगवान श्री कृष्ण के धर्म को स्थापित करने के लिए सहायक हो वो हम करेंगे। यदि हमारा नाम खराब हो, कुछ भी हो, हम उसके लिए स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात इतना ही नहीं, युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतरे और वो गए कहां, भीष्म और द्रोण के पास आशीर्वाद मांगने। और भीष्म और द्रोण ने क्या आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर महाराज को, यशस्वी भव। ये लो, अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं और वो जहां पर जिसके लिए युद्ध कर रहे हैं उसका शत्रु पक्ष आकर, शत्रु पक्ष का जो मेन लीडर है वो आकर आशीर्वाद मांग रहा है और यहां पर आप यशस्वी भव। तो दुर्योधन, तो चलो फिर बैग पैक करो, अब क्या फायदा है यहां पे। इतना ही नहीं, ये तो रणभूमि उस स्थल की बात बता रहे हैं। इससे पहले द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को पैदा किया, केवल द्रोणाचार्य को मारने के लिए। वो जो उनके बीच में बैर था, बदला, वो बदले की भावना, वो बदले की भावना उसको शांत करने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए महाराज द्रुपद ने धृष्टद्युम्न यज्ञ के द्वारा धृष्टद्युम्न को पैदा किया। और धृष्टद्युम्न को पैदा करने के बाद भेजा कहां, द्रोणाचार्य के पास आशीर्वाद मांगने। द्रोणाचार्य के पास आशीर्वाद मांगने भेज रहे हैं कि उनसे आशीर्वाद मांगो, क्यों, तुम जिसके लिए पैदा हुए हो वो कार्य को सिद्ध कर सको सफलता से। द्रोणाचार्य जानते हैं ये धृष्टद्युम्न पैदा हुआ मुझे मारने के लिए और मुझसे आशीर्वाद मांगने आया है, और द्रोणाचार्य आशीर्वाद दे रहे हैं, यशस्वी भव, तुम जिसके लिए पैदा हुए हो उस कार्य को तुम सिद्ध करो। सोचिए कोई होगा ऐसा इस संसार में, कोई मारने आ रहा है और मारने आ रहा है उसे हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि हां बेटा तैयार हूं मैं, मारो, मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद का अर्थ क्या है कि आजकल के आशीर्वाद नहीं केवल हाथ ऊपर कर दिया और कुछ होता तो है नहीं, बस केवल कांग्रेस पार्टी की याद आती है। ये जो पिछले युगों के ये महानुभाव, इनके आशीर्वाद के साथ ये अपनी शक्ति भी देते, अलोंग विद द ब्लेसिंग्स दे वुड गिव एम्पावरमेंट, अपनी शक्ति भी देते आशीर्वाद के साथ। तो मानो भीष्म और द्रोण इन्होंने युधिष्ठिर महाराज को अपने आशीर्वाद के साथ शक्ति दी, कैसे मारो। और महाभारत में वर्णन है कि अपने मृत्यु का रहस्य बताया। इतना नहीं कि एक तो शत्रु पक्ष में खड़े हुए वो बदनामी ली, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, धृष्टद्युम्न ने इन सबको यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, और उसके साथ साथ भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर और अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम घबराना मत, ये मत सोचना कि तुम्हारे पितामह तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम कैसे इन्हें मार पाओगे। और एक दृष्टिकोण से भीष्म पितामह का जो युद्ध कौशल था वो अर्जुन से ज्यादा था, हालांकि वृद्ध अवस्था उनकी थी लेकिन उनके पास जो धनुर्विद्या का युद्ध कौशल था वो अर्जुन से ज्यादा था। इसलिए भीष्म पितामह जानते थे कि अर्जुन हिचकिचाएगा दो कारणों की वजह से, एक तो मैं जो अर्जुन का पितामह वो, और उसके बाद अर्जुन जानता है, सभी जानते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा जानता हूं धनुर्विद्या अर्जुन से। तो भीष्म पितामह ने अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा कि घबराना मत, जो समय आएगा मेरे मुझे मारने का, और इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था भीष्म पितामह को, इन्होंने कहा जब वो समय आएगा मुझे मारने का मैं बताऊंगा कि मुझे कैसे मारो। भीष्म पितामह ने कहा अभी मैं नहीं बताऊंगा, उस समय बताऊंगा कि मुझे कैसे मारना है, वो शिखंडी को सामने लाकर ये सब कुछ हम सब जानते हैं तो कैसे मारना है। तो भीष्म पितामह ने अपने मरने का रहस्य, सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं, हमारा वो रहस्य ही रहस्य रह जाता है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये कोई बता दे कि तुम स्वाइन फ्लू से मरोगे, तो वो अब वो जो भी स्वाइन या सुअर उसको जाके बोले कि भाई मेरे मरने का रहस्य तुम हो, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें मैं शक्ति प्रदान करता हूं कि तुम मुझे इस समय मैं यहां पर मौजूद होऊंगा, तुम्हारा वायरस मेरे अंदर डालना और फिर मुझे मारना, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य इन्होंने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि मेरे मरने का रहस्य मैं बताता हूं, मेरे मरने का रहस्य है जब तक मैं युद्ध करता रहूंगा मुझे कोई नहीं मार सकता। सबसे पहले रहस्य बताया उनके नहीं मरने का कि जब तक मैं युद्ध करता रहूंगा तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता, परंतु जिस क्षण मैंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए रणभूमि पर उस समय मुझे कोई भी मार पाएगा। इसलिए द्रोणाचार्य जब वो समाधि में बैठे और वो बुरी खबर उन्होंने सुन ली, अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा का वध हुआ, तो द्रोणाचार्य उस समय समाधस्थ थे, उस समय दृष्टद्युम्न ने आके उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो कहां ऐसे लोग आजकल सुनने के लिए भी मिलते हैं, ऐसे महान आत्मा जैसे भीष्म और द्रोण। और भीष्म और द्रोण ये विशेष रूप से दुर्योधन शकुनी दुशासन और कर्ण ये जो मिलकर खिचड़ी पकाया करते थे हर समय। क्या खिचड़ी? कैसे पांडवों को गलत तरीके से मारा जाए, अलग अलग षड्यंत्र ये सब तीन मिलके करते थे। तीन नहीं, कितने हो गए? चार हो गए। हाँ, ये चार लोग, और इनको आशीर्वाद देने वाला इनके पिता हो धृतराष्ट्र। तो ये षड्यंत्र लेकर पूरा पेपर वेपर बनाकर धृतराष्ट्र का साइन करा लेते, और फिर लाक्षाग्रह में कहीं मारना, वनवास भेज देना, ये सब कुछ करना, सारे कुरापात ये सब मिल के करते और धृतराष्ट्र से उसका सैंक्शन ले लेते। परंतु भीष्म और द्रोण हर समय, हालांकि इनका बस चलता तो वो शकुनी और कर्ण को तो कब धक्के मार के निकाल देते, वो तो थे ही नहीं उस परिवार के, उनको कोई जरूरत नहीं थी हस्तिनापुर में रहने की, परंतु फिर भी सहन किया और उनको भी सही शिक्षा देते हुए हर दिन वो रणभूमि से पहले इन सब को सही पथ पर लाने के लिए भीष्म और द्रोण हर समय लगे रहते। हालांकि महाभारत में इतना वर्णन है कि क्या क्या शिक्षाएं दुर्योधन को नहीं दी भीष्म और द्रोण ने, सही शिक्षा सही पथ पर आने की। तो इसलिए यहां पर अर्जुन इन दोनों को कह रहे हैं गुरु न हत्वा ही महानुभावा, कि कैसे मैं इन्हें मारू, ऐसे महान व्यक्ति आप जानते हैं, आप ही ने इनको कहा है वहां पे खड़े होने के लिए, आप जानते हैं कैसे महान व्यक्ति हैं, कैसे मैं इनको मारू। अब इस श्लोक में अर्जुन ने ये जो कह दिया भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्दान, कि ये जो मुझे भोग मिलेगा, क्या भोग? राज्य का भोग, राजभोग, वो नहीं, राज्य का भोग जो मुझे मिलेगा, और मुझे मिलेगा कैसे? इनको मारने के पश्चात, जब तक इन्हें मैं मारूंगा नहीं तब तक युद्ध जीतना संभव, युद्ध जीतने के लिए इन दोनों को तो मारना सबसे आवश्यक है। तो इनको मारूंगा और इनके ही रक्त से सना हुआ पूरा राज्य मुझे प्राप्त होने वाला है। पूरे जीवन भर नित्य काल तक मुझे लोग मुझे कलंकित करेंगे कि हे अर्जुन, तुमने अपने गुरु की हत्या करके राज्य गद्दी ली, ये पाप मेरे ऊपर हर समय बना रहे। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि अर्जुन ये बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जिस किसी प्रकार का भोग हो, चाहे वो हम उसे कोई नैतिक नाम दें, मोरालिटी या एथिक्स का नाम दें, उसके पीछे भगवान गीता में ही कहते हैं आगे चलकर कि उसके पीछे वो पाप का रक्त उसके धब्बे है होते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण 18 अध्याय में भगवान ने दिया अग्नि और धुएं का। कोई जानता है ये उदाहरण? हमारे भक्ति शास्त्री अग्नि और धुएं का उदाहरण भगवान 18वें अध्याय में दिए हैं इसके संदर्भ में। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है आपको अग्नि और धुएं से? अग्नि देखी ना, अग्नि धुआं देखा है? अग्नि से धुआं निकलता है। जहां अग्नि है वहां जरूरी है कि नहीं? नहीं, भगवान कहते हैं जहां अग्नि है वहां धुआं होना ही है। धुआं तो रहेगा, वो एक मुहावरा भी है ना, अरे जहां धुआं दिख रहा है वहां अग्नि कहीं पर है, उसके वजह से धुआं आया है। तो भगवान ये बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि इस भौतिक संसार में चाहे आप कोई भी कर्म करो, अग्नि के समान कर्म। अर्थात अग्नि को क्या कहा गया है? अग्नि ये एक ऐसा तत्व है भौतिक प्रकृति का जो किसी को भी शुद्ध कर देता है। इसलिए ये मृत देह को जब जलाया जाता है अग्नि में दिया, अग्नि संस्कार क्या होता है? अग्नि ये जो भी अलग अलग प्रकार के दूषण मृत शरीर पे होते हैं, आ जाते हैं, उन सब को अग्नि शुद्ध कर देती है। इसलिए आप देखिए कोई भी वस्तु सड़ रही है, गंदी हो रही है, उसे अग्नि में डाल देते हैं। सूर्य से जो अग्नि निकलती है, सूर्य अपनी अग्नि की रोशनी से यदि मलमूत्र भी है पृथ्वी पर तो उसे भी वो अपने ताप से शुद्ध कर देता है सूर्य। तो अग्नि के विषय में, इसलिए यज्ञ में भी आप देखिए अलग अलग प्रकार के जो संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार या दीक्षा का संस्कार, होम इत्यादि, उसमें जो अग्नि जलाई जाती है, ये सब अग्नि अलग अलग प्रकार के पापों को व्यक्ति से मुक्त कर देती है। अब यहां पर भगवान कहते हैं कि यदि किसी का कर्म अग्नि के भी समान हो, शुद्ध, परंतु फिर भी अग्नि में धुआं देखा जाता, धुएं को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, धुएं को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया है। अब देखिए अग्नि का सबसे ज्यादा प्रयोग कब होता है? यह हमारे जीवन यापन के लिए। देखिए हमारे शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए हमें अन्न और खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो अन्न कैसे उगता है? सूर्य की रोशनी से अन्न उगता है, ये सब्जियां वगैरह, ये सब सूर्य की रोशनी से ये सब कुछ उगता है। और इसे हम ऐसे ही नहीं खा सकते, चावल को ऐसे ही नहीं खा सकते, उसे पकाना होता है। उसे पकाता कौन है? फिर अग्नि। उगाता अग्नि, पकाता अग्नि, पचाता कौन है? अग्नि। तो उगाता अग्नि है, पकाता अग्नि है और पचाता अग्नि है, और फिर ये शरीर खत्म होने के बाद भी अग्नि में ही जाता है। अग्नि की वजह से जी रहा है और खत्म होने के बाद अग्नि ही पूरा सब कुछ भस्म बनाता है। तो ये जो अग्नि है भगवान ने अग्नि का उदाहरण 18वें अध्याय में लिया है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी हम कर्म करें, जब तक वो तीन गुणों के अधीन है, वो कर्म के साथ धुआं, धुआं का अर्थ है पाप, उसके साथ पाप सटा हुआ है, अलग नहीं कर सकते उसको, वो धुएं को और अग्नि को अलग नहीं कर सकते। एक तरीका है अग्नि बुझा दो, है ना, न रहेगी अग्नि न रहेगा धुआं। हाँ, भगवान ये नहीं बोल रहे, अग्नि बुझाने का अर्थ है अब कुछ ना करना, बस कोई कर्म नहीं करना, नहीं, ये गीता का संदेश नहीं है। अग्नि का इस्तेमाल करना होगा, जैसे वो गांव में वो चूल्हे पर जब गृहिणी खाना पकाया करती थी तो इतना धुआं निकलता था, कई बार आंखों में वो पूरा धुआं, आंसू आ जाते थे, इसलिए मैं आ जाते थे बोल रहा हूं, आजकल तो ये सब कुछ नहीं होता है। हाँ, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे, एक क्षण भी नहीं जाता हम बिना कर्म के रह सके। तो अब यदि खाना पकाना है तो अग्नि तो जलानी होगी, और अग्नि जलाए जाएगी तो फिर धुआं तो निकलेगा, तो अर्थात कर्म नहीं छोड़ सकते। एक और उदाहरण यदि हम लें, जो कि शास्त्रों में बताया गया है कि सिक्के के दो पहलू, अभी सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट, हेड्स एंड टेल्स, और वो हेड्स और टेल्स इंग्लिश में देखिए अच्छा है, दोनों ऑपोजिट है, हेड और टेल ऑपोजिट कहते हैं ना, तो जो सिक्का है या तो आपको सिक्का न लें, सिक्का लेंगे तो दोनों एक साथ लेना होगा, उसमें से एक नहीं ले सकते कि मुझे हेड अच्छा लगता है, हेड लेंगे, टेल नहीं अच्छा लगता, नहीं, वो भी आएगा उसके साथ साथ। तीसरा उदाहरण दिया गया है फल एवं बीज, आम सबको अच्छा लगता है ना, आम, आम खाना कितना अच्छा लगता है, इतनी बड़ी गुठली होती है बीच में, लेकिन वो नहीं खाना अच्छा लगता, उसको चूसना अच्छा लगता है, लेकिन वो चबा चबा के, कोई कभी देखा किसको खाते है गुठली का जूस, इसलिए एक लक्षण भविष्य पुराण में और श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि कलयुग का एक लक्षण है कि फल में रस कम होगा, बीज ज्यादा होंगे। वो आजकल अलग अलग तरीके से सीडलेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कृत्रिम तरीका है, इसलिए ये जो उदाहरण है फल में, फल का बीज, तो अब जैसे मान लीजिए आम हो गया या संतरा, देखिए संतरा खाने जाओ कितने सारे बीज निकलते रहते, कोई नींबू हो गया उसमें भी बीज हैं, तो ये जो फल और फल के साथ जो बीज है ये भी वही संदर्भ में है कि कर्म और कर्म के साथ कर्म का पाप। अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा तो पाप नहीं लगेगा, कुछ कैसे नहीं करोगे, सांस तो लोगे, सांस तो लेंगे ना जीने के लिए, तो कुछ नहीं करने के लिए मरना पड़ेगा, तो अगर कोई मरेगा तो आत्महत्या कर रहा है, स्वाभाविक रूप से नहीं मर रहा है तो अपने आप को मर रहा है, वो तो बहुत बड़ा पाप है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मरूंगा नहीं, जीऊंगा लेकिन कुछ करूंगा नहीं, तो सांस तो ले रहे हैं ना, सांस लेते समय कितने जीवाणु कीटाणु को अंदर बाहर मार रहे हो, चलते समय पंच शून्य जिसको शास्त्र में कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में या कहीं पर भी आप देखिए, झाड़ू लगाते समय, पानी निकालते समय, खाना पकाते समय, वो अलग अलग जो ये होते हैं स्पाइसेस उनको पीसते समय, ये सब बताया गया है पंच शून्य, इसमें सब में पाप, इसलिए बताया जाता है कि जो कुछ पके उसे भगवान को अर्पित करो तो भगवान वो सब से उसे पाप रहित कर देते। अब जो भगवान ने कर्म के विषय में अर्जुन को बताया कि कर्म विकर्म और अकर्म, कौन सा पुण्य कर्म होता है, कौन सा पाप कर्म होता है और कौन सा अकर्म भक्ति का कर्म, इन दोनों से परे, तो अर्जुन थोड़ा भ्रमित हो गए कि ये इतने सारे कर्म, इसके अंदर भी अलग अलग सब श्रेणियां होती कर्म की। इसलिए भगवान ने कहा कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण विकर्मणश्च बोद्धव्यम कर्मणा गहना गति। अर्जुन तुम ये समझ लो कि तुम नहीं समझ पाओगे। क्या नहीं समझ पाओगे? ये गहना गति, ये कर्म की जो गहना गति है, इसे तुम नहीं समझ पाओगे कि कौन सा पुण्य है, कौन सा पाप है, कौन सा अकर्म है। तुम केवल सर्वधर्मान परित्यज, मैं जो बोल रहा हूं करो, उठो लड़ो। तो अब जैसे देखिए, हम चार नियम पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करना, नशा जुआ इत्यादि ये सब नहीं करना। तो अब कोई व्यक्ति, सभी किसी काम धंधे में लगे हैं, किसी पेशे में लगे हैं, देखिए कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म है वो कहीं ना कहीं किसी पाप से कनेक्टेड है इस कलयुग में। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, प्लास्टिक की बोतल बनने वाली फैक्ट्री है, प्लास्टिक की बोतल बन रही, वो बेचारा प्लास्टिक की बोतल बना रहा है, प्लास्टिक की बोतल बनाकर उसको जो आमदनी मिलती है उस आमदनी से अपना जीवन चला रहा है। अब वो प्लास्टिक की बोतल का क्या इस्तेमाल होता है ये तो इसे पता नहीं। अब वो प्लास्टिक की बोतल यहां वहां बेची जाती है, वो प्लास्टिक की बोतल, मान लीजिए कांच की बोतल यदि ले तो वो कांच की बोतल उसने तो बना दी और उसे पता नहीं, उसने तो अपने तरफ से ईमानदारी से एक कांच की बोतल बनाई और कांच की बोतल फिर लेबल लगाया गया और अंदर दारू, और फिर कोई दारू पी के वो पाप करके वो नर्क जा रहा है, तो जिसने वो बोतल बनाई वो भी भागीदार बन रहा है। ये है कर्मणो गहना गति। तो उसे यमदूत पकड़ रहे हैं, वो बोलते क्यों पकड़े, तुमने बोतल बनाई थी ना, मेरे को क्या पता क्यों बोतल। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा है ये तो बड़ी ना इंसाफी है, भौतिक संसार में लेना है तो ये बिल भरना पड़ता है, ये कर्म इस प्रकार से व्यक्तियों को पकड़ता है। ये एक उदाहरण दिया, सोचिए हम एक एक उदाहरण यदि लें कि क्या वस्तु कहां से संबंधित हो के उसे उसका कर्म मिलेगा। एक श्रीमद् भागवत से हम उदाहरण लेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को यह बोलते हैं कि जब तक तुम पूर्ण शरणागत नहीं होगे तब तक ये कर्म तुम्हें छोड़ने नहीं वाले अर्जुन, तुम जो भाग के भी जाओगे ना वो भी तुम्हारा पाप कर्म कहलाया जाएगा, भाग के जाना, इन्हें मारोगे उसमें भी पाप है। ये नहीं बोल रहा कि इसमें मारने में पाप नहीं, इनको मारने में भी पाप है, भागने में भी पाप है, तुम इधर रथ पे खड़े हो वो भी पाप है, बैठे हो वो भी पाप है। तो जब तक तुम्हारे पापा भगवान अपने आप को बोल रहे हैं पिता माता धाता पिता मां, जब तक उनको शरणागत नहीं होगे ये पाप से मुक्ति नहीं। अब वो जो श्लोक है 18वें अध्याय का, इसमें श्रील प्रभुपाद का बहुत सुंदर तात्पर्य है, जिसमें प्रभुपाद जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसी वर्णों में तो सभी लोग कर्म कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण वर्ण में कर्म कर रहा है, कोई क्षत्रिय वर्ण में कर रहा है, कोई वैश्य कोई शूद्र। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरेक वर्ण में उसके साथ उसका पाप सटा हुआ है। सबसे पहले यदि ब्राह्मण को लिया जाए तो ब्राह्मण यदि कहे अरे हम तो भाई शास्त्र का पालन कर रहे हैं, हालांकि आजकल तो सभी हम पैदाइशी शूद्र हैं, परंतु पिछले युगों में जो ब्राह्मण हुआ करते थे प्रामाणिक ब्राह्मण, उनको ये सब यज्ञ करना होता था, गोमेद अश्वमेध यज्ञ, जिसमें प्राणियों की हत्या करनी होती थी। और जब तक ये ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु को सब कुछ अर्पित न करें, तब तक वो पाप उनके ऊपर लगता, ब्राह्मणों के ऊपर। तो कोई यदि ब्राह्मण कुल में भी पैदा हुआ है, ब्राह्मणत्व का भी पालन कर रहा है, परंतु ये सब कुछ करना उसका कर्तव्य, उसका स्वधर्म, जिसके वजह से उसके ऊपर पाप चढ़ता है, जब तक कि वो विष्णु को सब कुछ अर्पित नहीं करता। इसलिए आप देखिए, ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं तो कहते हैं, मान लीजिए उन्होंने घी अर्पित किया, तो वो आहुति अर्पित करते समय वो बोलते हैं, इदम न मम। इदम न मम का अर्थ है कि ये मेरा नहीं, न मम मेरा नहीं, ये मैं अर्पित कर रहा हूं ताकि मैं इस पदार्थ को शुद्ध करूं और अपने आप की चेतना को शुद्ध करूं उसे अर्पित करने के द्वारा। तो ब्राह्मण, अब इसके पश्चात क्षत्रिय, क्षत्रिय के ऊपर पाप चढ़ता है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है? शत्रु की हत्या करना। तो किसी की हत्या की, पाप चढ़ गया उसके, लिखा जाता तुरंत इसकी हत्या इस क्षत्रिय ने की। जब तक कि वो क्षत्रिय फिर से, जिसकी भी उसने हत्या की, वो सब कुछ वो जब तक कि भगवान श्री विष्णु को अर्पित नहीं करता, तब तक वो पाप से बंधा हुआ है। श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण है महाराज नृग का, महाराज नृग का उदाहरण है। अब देखिए, ये उदाहरण सुनकर हमें समझ में आएगा कर्मणो गहना गति किसे कहते हैं। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में ये प्रसंग है, जब यादव कुल के भगवान के वंशज सांभ इत्यादि, वो एक बार खेलते खेलते वो एक कुएं के पास पहुंचे द्वारका में, और कुएं पे उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर एक बहुत बड़ी छिपकली, इतनी विशाल विकराल छिपकली अंदर थी। तो वो प्रयास करे, अभी इतनी बड़ी छिपकली तो कभी हमने देखी नहीं, कुएं के अंदर सूखा कुआं। तो उस छिपकली को निकालने का प्रयास किया, नहीं निकल वो छिपकली को निकाल सके, तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कृष्ण को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने अपने बाएं हाथ से, भगवान साहब बाएं हाथ से बहुत अच्छा काम करते, बाएं हाथ से छिपकली को बाहर निकाला और छिपकली का उद्धार कर दिया। छिपकली फिर परिणित हुई एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति के रूप में। तो भगवान ने पूछा, भाई ये तुम्हें कुछ श्राप मिला था? तब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि वो पिछले जन्म में महाराज नृग थे और बहुत दानवीर राजा, ऐसे दानवीर राजा कि ब्राह्मणों को करोड़ों गाय दान दिया करते थे। तो एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को उन्होंने बहुत सी गाय, सैकड़ों गाय दान में दी। तो हुआ क्या कि जिस ब्राह्मण को गाय दान में दी, वो गायों के बैच से एक गाय वापस आ गई इनकी गौशाला में, महाराज नृग की राज्य में एक गाय आ गई अपने आप। वो ब्राह्मण को भी पता नहीं और महाराज नृग को भी पता नहीं कि वो गाय वापस आ गई। अब दूसरे ब्राह्मण आए तो दूसरे ब्राह्मण को महाराज नृग ने और जो जितनी बची हुई गाय थी उसमें से ये गाय भी दे दी, उनको पता नहीं ये जो वापस लौट कर आ गई थी उस गुट से, तो इसको दे दी। अब वो ब्राह्मण को समझ में आ गया कि मेरे को जो गाय दान में दी थी उसमें से एक कम है, तो वो आए महाराज नृग के पास कि वो गाय आपने जो दान में दी वो कम है। तो फिर पता लगाया गया तो अब पता लगा कि वो दूसरे ब्राह्मण को दान में दे चुके हैं। तो ये पहला वाला ब्राह्मण कहता है कि मुझे वही गाय चाहिए। अब ये भी देखिए, इनका भी हट देखिए, वही गाय चाहिए। तो महाराज नृग ने कहा, ये दूसरा ब्राह्मण कहता है, नहीं आपने मुझे दान में दिया, आप कैसे वापस ले सकते हैं दान में दी हुई वस्तु, मैं नहीं दूंगा। तो अब वो दोनों ब्राह्मण के बीच में इस प्रकार का वाद विवाद। तो महाराज नृग ने दोनों से कहा कि मैं आपको 100,000 गाय और देता हूं और आपको 100,000 गाय और देता हूं। नहीं, वही गाय चाहिए मुझे, ना तो 1,00,000 गाय चाहिए मुझे, वही गाय चाहिए। और वो कहते मुझे भी कोई 1,00,000 गाय नहीं चाहिए, मुझे यही गाय चाहिए। तो दोनों यही गाय, और बेचारे उनको छिपकली बना दिया, उनको शाप दे दिया, छिपकली बन जाओ। तो यहां पर भगवान महाराज नृग का उदाहरण से ये सिखा रहे थे कि कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति अपने इतने उदार हृदय से कुछ दान भी दे रहा है, परंतु उसमें भी ये भौतिक संसार का स्वरूप, इसमें भगवान ये नहीं दिखा रहे कि गाय को दान नहीं देना चाहिए, ये नहीं समझना बंद करो गाय को दान देना, अरे छिपकली बनना क्या है, तो बहुत भयावह है। भगवान ये नहीं सिखा रहे कि गाय को दान नहीं देना चाहिए, भगवान ये सिखा रहे हैं कि इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति, अब जैसे गोदान से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, तो गोदान में भी वो धुआं है, समझ में आ रहा है, वो अग्नि के साथ धुआं, उसके अंदर भी वो धुआं छिपा है। यदि वो भगवान श्री कृष्ण को शरणागत कोई व्यक्ति नहीं करता, इसलिए तो क्षत्रिय महाराज मृग के साथ ये सब कुछ हुआ। परंतु इसमें, इन सब में महाराज नृग की रक्षा भगवान ने इसलिए की। अब मान लीजिए इसी स्टोरी को, महाराज नृग की स्टोरी को हम इस प्रकार से ले, महाराज नृग भगवान के अनन्य भक्त थे, तो भगवान की योजना थी कि वो छिपकली इस प्रकार से बने और भगवान उनका आकर उद्धार करें। यदि महाराज नृग भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं होते और केवल गौदान किया करते तो उनको स्वर्ग मिलता केवल। अब वो एक तथाकथित गलती के वजह से, जो भी उनकी गलती नहीं थी, अनजाने में जो हो गया, उसके वजह से जो उनको छिपकली का रूप मिला, उसके वजह से उनको भगवान श्री कृष्ण के हस्तों का स्पर्श हुआ, भगवान का सानिध्य, भगवान का दर्शन और भगवद्धाम, इसे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान को शरणागत हुए तो सर्व पापों से भगवान ने मुक्त कर दिया। वैश्य, अब बिना इसके झूठ बोले, बिना झूठ बोले कौन वैश्य है जो पैसा कमा पाएगा? ये जो मैं आपको बेच रहा हूं, बिल्कुल मुनाफा मेरे को नहीं मिल रहा, नुकसान कर रहा हूं मैं इसमें, बोलते हैं ना ऐसे, अरे इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, मैं अपने जेब से पैसे निकाल के डालने वाला हूं इसमें, आपके लिए, केवल आपके लिए मैंने दुकान खोली, खुद का तो दिवाला निकल रहा है, आपकी दिवाली मनाने के लिए मैं दिवाला निकाल रहा हूं। तो बिजनेस यदि कोई कर रहा है, ये सब बताया गया है नीति शास्त्र में, ये सब बताया गया है कि उसे ये सब कुछ करना होता है, और बहुत धुआं होता है, अग्नि कम होती, धुआं ज्यादा होता है, धुआं धुआं ज्यादा होता है, तो पूरा किसी को दिखाई भी नहीं देता कि असली प्रोडक्ट है कि नकली है। जैसे मुझे हाल ही में, लोग अक्सर अपना, कई बार अपने जीवन यापन के लिए कितने झूठ नहीं बोलते, तो मुझे एक हाल ही में एक कहानी सुनाई गई कि एक जंगल में एक शेर रहा करता था, और ये शेर जंगल का राजा, सिंह जंगल का राजा, तो अपना अपने राज ठाट बाट से घूमता रहता। तो वहां पर उसने एक बार शिकार के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो कुत्ते को देखा, दूर कुत्ते को, तो कुत्ते को देखा। अब कुत्ता, उसने जान लिया कि ये शेर, ये सिंह ने मुझे देख लिया, तो अब इसके सामने भाग पाना, अपने आप को बचा पाना असंभव। तो उसने क्या युक्ति की, कुछ हड्डियां पड़ी थी, तो वो हड्डियों को खाना शुरू किया, और हड्डियों को खाते खाते अपनी पीठ वो शेर को दिखाते हुए हड्डियों को खा रहा है, और शेर निकट आ रहा है धीरे धीरे खाने के लिए, उसके ऊपर झपटने के लिए। तो कुत्ता हड्डियों को खाते खाते बोलता है, अरे क्या शेर का मांस खाने मिला है आज, आज की दावत जैसी दावत नहीं है, ऐसा शेर का मांस खाने मिला है। और जोर जोर से शेर को सुनाते हुए हड्डी को चबा रहा है, शेर सुन रहा है, इसका लंच आज एक शेर था। तो वो वहां से चंपट हुआ धीरे धीरे, बोला कि भाई ये कोई साधारण कुत्ता नहीं लगता है, इसका तो लंच ब्रेकफास्ट डिनर शेर का होता है। तो वो जाने लगा। अब हुआ क्या कि ये कुत्ते का बैर था एक बंदर के साथ, जो पेड़ पे देख के सारा तमाशा देख रहा, पेड़ पे चढ़ा हुआ ये सारा तमाशा देख रहा था। तो बंदर ने सोचा कि ये इसको उल्लू बनाता है, शेर को ये उल्लू बना रहा है। तो वो बंदर वो शेर के पीछे पीछे जाता है और शेर को सब बताता है, ये ऐसे ही बोल रहा है, फेंक रहा है ये सब कुछ, ये इसने कोई शेर को मारा नहीं है, ऐसी हड्डियों को चबाते हुए तुमको भगाने के लिए सब कुछ बोल रहा है वो। अब शेर इतना क्रोधित, इस कुत्ते की ये मजाल, कुत्ते की औलाद। खैर सही बोला, गाली तो नहीं दी उसने। तो वो अब ये कुत्ता जान गया कि ये बंदर गया है चुगली करने, कुत्ता जान गया कि चुगली करने गया है मेरी, और वो शेर को अब लेके आ रहा है मुझे मारने के लिए। तो अब कुत्ता देखो कितना चतुर, तो अब बंदर शेर पे बैठा बैठा, शेर के ऊपर बैठा है और वो जा रहा है, शेर जा रहा है खाने के लिए। तो फिर से ये हड्डी चबाते हुए कुत्ता देख लिया, अभी बंदर बैठा है शेर के ऊपर, इसको लेके आ रहा है, चुगली किया है मेरी। तो अब कुत्ता क्या बोलता है, कुत्ता बोलता है, अरे उस बंदर को एक घंटा हुआ भेजे उस शेर को लाने के लिए, साला अब तक आया नहीं। अब जैसे शेर ने ये सुना, वो बंदर को लिया नीचे और हुआ बंदर का काम तमाम। ये कहानी हमारे डे प्रभु ने मुझे भेजी, शायद कल भेजी थी। तो अभी जस्ट मैं ये वैश्य और असत्य की बात आई तो मुझे ध्यान में आई। तो इस भौतिक संसार में लोग बोलते ना, पापी पेट का सवाल, जीने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई यदि पेट को, इसलिए पेट ये बोला जाता ना पापी पेट, और उसके सवाल के उत्तर के लिए कितने पाप करने पड़ते हैं, सवाल क्या है कैसे भरें इसे। तो इस भौतिक संसार में भगवान ने गीता में कह दिया, हाँ अग्नि और धुआं अलग नहीं कर सकते, अग्नि जलानी है, धुआं आएगा आंख में जाएगा, जो कुछ होगा, बिना अग्नि के तो रह नहीं सकते, अग्नि जलाओगे धुआं आएगा। और अंततः शूद्र के विषय में कहा गया है कि अब ये जान लीजिए कि कलयुग में हम सब पैदाइश इस कैटेगरी में, इसलिए कहा गया कलो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवे द्विज, कि संस्कार से कोई व्यक्ति द्विज बन सकता है। कि यहां पर धुआं क्या है, ये सब धुआं बताया गया है, ब्राह्मण के लिए धुआं है वो गोमेद अश्वमेध यज्ञ में जो पशुओं की हत्या, वो धुआं है। क्षत्रिय के लिए शत्रु हत्या, ये धुआं, ये पाप। वैश्य के लिए असत्य बोलना, ये धुआं है। और शूद्र के लिए अयोग्य स्वामी की सेवा। अब देखिए कितने हम कलयुग में इस कैटेगरी में हैं, किसी कंपनी में किसी बॉस की सेवा करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो पगार दे रहा है, बिल्कुल इच्छा नहीं वो बॉस की सेवा कर। पाश्चात्य देश में यूके में उन्होंने एक सर्वे निकाला कि जो जो कंपनियों में काम करते हैं जो एम्प्लॉयज, उनकी एक सबसे तीव्र इच्छा क्या होती है दिन की, अलग अलग इच्छाओं में कैटेगरी उन्होंने निकाली कि सबसे तीव्र इच्छा क्या होती। तो सबसे तीव्र इच्छा 80% इन एम्प्लॉय की ये होती है कि कब बॉस को गोली मारूं, ये इच्छा देखिए। और फिर उसके सामने जाके इच्छा ये हो रही है मन में, और सामने जाके उसको सैल्यूट मार के उसको उसकी चाकरी करनी पड़ती। तो ये धुआं इसके साथ छिपा हुआ इस कलयुग में, इसलिए भगवान बोल रहे हैं। और अर्जुन यहां पर भगवान को यह बता रहे हैं कि भगवान आप धर्म शास्त्र उसके ज्ञाता हो, रचयिता हो, आप दिए हैं ये सब कुछ शास्त्र, और शास्त्र में आपने ये सब कुछ बताया है कि इन सब के साथ इतना सब कुछ पाप छिपा है, यदि कोई पुण्य भी करने जाए तो उसके पीछे कितने पाप हैं जब तक कि अकर्म नहीं करता। और यहां पर मेरे गुरु ये महानुभाव यहां पर खड़े हैं, इनको मारूंगा कितना बड़ा पाप लगेगा मुझे। तो देखिए एक श्लोक के पीछे अर्जुन भगवान को क्या कुछ संकेत नहीं दे रहे, भगवान को उनके गुरु के बारे में संकेत दे रहे हैं। सांदीपनि मुनि उन्होंने जो गुरु दक्षिणा दी और ये सब कुछ जो रक्त रंजित भोग है, इसलिए ये समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार में हम चाहे कितना भी साफ कर करके इंद्रिय भोग करें, कितना भी उसे साफ करके इंद्रिय भोग करें, उसके पीछे उसके पाप के कीटाणु आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, वायरस वो हर जगह पर मौजूद हैं वो कीटाणु। जैसे हमारे शरीर में वो पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया वायरस सब हमारे शरीर के अंदर है, वैसे इस भौतिक संसार में पाप पुण्य के वायरस सब जगह है, हम सब के अंदर हैं, बाहर हैं, सर्वव्यापी। इसलिए गीता का संदेश क्या है अंततः, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये समझ लेना केवल, ये सब कुछ जब भगवान को अर्पित किया जाएगा तब हम उससे मुक्त हो पाएंगे। तो आज के श्लोक के ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिसकी चर्चा हमने की, अर्जुन के द्वारा भीष्म और द्रोण के लिए गुरु शब्द का प्रयोग उन्होंने क्यों किया, भीष्म और द्रोण को महानुभाव उन्होंने क्यों पुकारा, क्या कारण उनको महानुभाव पुकारने का, और फिर अंततः जो अर्जुन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भुंजीय भोगान रुदित प्रदिग्धान, कि ये जो भोग मैं करूंगा राज्य का ये इनके रक्त से सना हुआ होगा, गुरु हत्या के पाप के रक्त से ये सना हुआ होगा। अब अगले श्लोक में अर्जुन भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भगवान अब तक अपने मत से डगमगाए नहीं है, कौन सा मत, भगवान अब तक सराहना नहीं कर रहे कि तुमने जो कुछ कहा हाँ भाई अब चलो रथ पीछे लेते हैं चलते हैं फिर से अब घर चलते हैं। तो अर्जुन अब अगले श्लोक में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि ठीक है अब आप बताइए कि इनके ऊपर जीतना या इनके सामने हारना इनमें से क्या श्रेयस्कर है, आप बताइए। तो इसलिए अब धीरे धीरे अर्जुन कौन से श्लोक तक आ रहे हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, उस श्लोक तक आ रहे हैं। इसलिए भगवान अब रुके हुए हैं, जब तक वो श्लोक नहीं आता भगवान बोलना शुरू नहीं करेंगे, तब पहले तुम शिष्य की भूमिका निभाओ फिर गीता शुरू होगी। तो अगला श्लोक वो अर्जुन की जिज्ञासा, इसके पश्चात अब तक तर्क है, इस श्लोक तक अर्जुन ने तर्क रखा है, अब इसके आगे अर्जुन जिज्ञासा कर उस कैटेगरी में जा रहे हैं, एक शिष्य की कैटेगरी में। अब तक वो शिष्य की कैटेगरी में अर्जुन नहीं पहुंचे हैं, तो जिज्ञासा के द्वारा अर्जुन उस कैटेगरी में पहुंचेंगे और फिर भगवान का गीत प्रारंभ होने वाला है उसके पश्चात। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न आज के संदर्भ में, कुछ अनाउंसमेंट्स?